हन्ता चेन मन्यते हन्तुम् हतश्चेन मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम् हन्ति न हन्यते अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा सिजन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमात्मनः। आत्मा न मरने वाला होता है न मारने वाला। जो व्यक्ति आत्मा को मरने वाला और मारने वाला समझता है वो व्यक्ति अज्ञानी है। वह आत्म तत्व को नहीं जानता है। आत्मा यदि मनन क्रिया का मारण क्रिया का करता हो या मरण क्रिया का करता, यदि उसमें मारण क्रिया का कर्तृत्व है तो आत्मा मारने वाला बनेगा। मारना भी एक क्रिया है। मारना माने शब्द को पैदा करने वाला संबंध है। दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक शब्द को पैदा करने वाला और दूसरा शब्द को नहीं पैदा करने वाला। हमारे दो अंगुलियों का जो संबंध है इससे कोई शब्द पैदा नहीं होता है, लेकिन जब हम ताली बजाते हैं तो शब्द पैदा होता है। तो जहां पर आभिघात, आभिघात का मतलब होता है शब्द को पैदा करने वाला संबंध। मारने वाला व्यक्ति जब वो किसी को मारना चाहता है तो आघात करता है, और वो आघात माने शब्द को पैदा करने वाला आघात, चोट जिसको आप बोलते हैं। लेकिन पहली बात, आत्मा में क्रिया हो और वो आत्मा की क्रिया जिसको मारना है उसमें पहुंच जाए, तब जाके हम उसको मार सकते हैं। यहां दोनों बातें संभव नहीं, क्योंकि आत्मा अविक्रिय है। अविक्रिय विज्ञान घन व्यापक। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि अविक्रियत्वात् आत्मनः तथा न हन्यत, आकाशवत अविक्रियत्वात् एव। आकाश की तरह वो अविक्रिय माने उसको कितना भी हिलाओ तो वो हिलता नहीं है, उसको कितना भी कोशिश करो लेकिन वो अपनी जगह से हिलता नहीं। आप ध्यान देना, यही सबसे बड़ी विशेषता है। आप किसी भी चीज को तब तक नहीं मिटा सकते जब तक उसके अंदर क्रिया ना हो। एक मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, बड़ा मजेदार उदाहरण है, हम लोग इस उदाहरण से शिक्षा भी ले सकते हैं। एक कोई महात्मा थे, एक गांव में रहते थे। उसी गांव में कोई एक पहलवान आया और उसने चुनौती दी लड़ने की। अब उसी पूरे एरिया में सूचना पहुंच गई कि अमुक पहलवान आया है, उसने चुनौती दी है, लड़ने की चुनौती दी। अब पुराना जमाना था और उसने कहा कि पूरे गांव वाले लिख दो कि मैं जीत गया, या तो लड़ो। गांव में महात्मा जी थे, वो भी पहलवान, भजन करते थे, साधना करते थे। एक कुटिया थी छोटी सी, बड़े मस्त साधु थे, बहुत तपस्वी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी। महात्मा ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि मेरे गांव की इज्जत है, मैंने भिक्षा खाई है गांव में, और मैं इस गांव को परास्त नहीं होने दूंगा। महात्मा ने कहा कि तुम मेरे को हरा नहीं सकते हो। पहलवान को भी लगा कि भाई मैं तो बहुत बड़ा पहलवान, इन्होंने कैसे चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन वो महात्मा थे, उनको भी लगा क्या पता। घोषणा हो गई कि महात्मा जी उस पहलवान के साथ लड़ेंगे, और महात्मा ने आश्वस्त किया उस पूरे गांव के लोगों को कि ये पहलवान कितना भी बड़ा हो मेरे को परास्त नहीं कर सकता, तुम लोग निश्चिंत रहो। जब तय हुआ समय लड़ने का, स्थान तय हुआ, हजारों लोग एकत्रित हो गए। आज साधु के साथ एक पहलवान लड़ने वाला है। आज आश्चर्य की बात, दो पहलवान नहीं लड़ रहे हैं, एक पहलवान और दूसरा साधु लड़ रहा है। बड़ी बात है। लोगों को भी आश्चर्य था कि अब ये मुकाबला बहुत मजेदार होने वाला है। हजारों की संख्या में लोग देख रहे थे, साधु को मानने वाले भी लोग थे, बहुत मानने वाले। दोनों पहलवान बीच में आ गए और सीटी बजा दी गई, सूचना दी गई, अब लड़ना शुरू हो गया है। और जैसे हाथ में हाथ मिला दिया पहलवानों ने, और वैसे ही महात्मा जी बड़े मजेदार, महात्मा जी लेट गए, चित लेट गए, जमीन पर चित लेट गए, और उन्होंने कहा कि मेरे को हरा दो। उस पहलवान ने कहा कि उठो लड़ो मेरे साथ, फिर मैं हराऊंगा। बोले वो शर्त तो थी नहीं तुम्हारी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे को लड़ाओ, मेरे को हराओ, तुम मेरे को हराओ। महात्मा ने कहा मूर्ख, तेरे से मैं लड़ूंगा तब मैं हारूंगा ना, यदि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा ही नहीं तो तुम मेरे को कैसे हराओगे। हार और जीत उसकी होती है जो लड़ता है, और जो लड़ता ही नहीं है उसकी ना हार है और ना उसकी जीत है। अभी हम लोग भी ना घर में या तो हारते हैं या तो जीतते हैं। अपने को मालूम पड़ता है कि भैया हम यहां हार रहे हैं, और वो अहंकार पर चोट लगती है, अरे बच्चे हमको हरा रहे हैं, मैंने बात नहीं मान रहे हैं, घर के लोग हमको हरा रहे हैं। हमें इसलिए लगता है, हारने का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि हम लड़ते हैं। महात्मा ने कहा कि मैं लड़ता ही नहीं तो कौन हराएगा मेरे को। बोले लिख कि महात्मा को मैं हरा नहीं सकता हूं। उस पहलवान को लिख के देना पड़ा कि महात्मा को मैं हरा नहीं पाया। बात ऐसी है, और ये लड़ना लड़ना क्या है, क्रिया है। लड़ना जो है ना ये विरोधी क्रिया है, दूसरे को नष्ट करने की क्रिया है, हावी होने की क्रिया है। ये दूसरे पर हावी होने की जो क्रिया है यही तो लड़ाई है, और इस क्रिया का आधार बने बिना न वो लड़ सकता है, और बिना लड़े न वो जीत सकता है और न वो हार सकता है। इसलिए क्रिया का कर्ता बने बिना न कोई मर सकता है और न कोई मार सकता है। बात यहां पर यही तो कह रहे हैं, हंता चेन मन्यते हंतुम, हतश्चेन मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो, नायम हन्ति न हन्यते। आत्मा न हनन क्रिया का करता है और न वो मरण क्रिया का करता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा अविक्रियत्वात् आकाशवत्, आकाश की तरह अविक्रिय होने के कारण आत्मा न मरता है और न वो मारता है। ऐसी बहुत सारी चीजें संतों के जीवन में दिखाई देती हैं। चाहे आप उड़िया बाबा जी महाराज देखो, चाहे मां आनंदमयी, वर्तमान के सिद्ध महापुरुष परम पूज्य महाराज श्री, वो अपने से अलग कुछ देखते ही नहीं है। उड़िया बाबा जी महाराज को गुरु मानते थे परम पूज्य महाराज श्री, और परम पूज्य महाराज श्री कहते थे कि ऐसा ज्ञान मैंने कहीं नहीं देखा, और उन प्रश्नों के जो उत्तर दिया करते थे उड़िया बाबा जी महाराज, बहुत अद्भुत। परम पूज्य महाराज श्री जब उड़िया बाबा जी महाराज जी के पास गए, महाराज जी ने सोचा कि मैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा, बाबा को चुप करूंगा। एक प्रश्न लेके गए, पुनर्जन्म किसका होता है? महाराज जी के मन में तर्क थे, पुनर्जन्म किसका होता है? मैं पूछूंगा, यदि आत्मा का बोलेंगे तो आत्मा में तो होता ही नहीं पुनर्जन्म। शरीर का बोलेंगे तो शरीर का तो होता नहीं, शरीर तो यही मर जाता है, पुनर्जन्म किसका होता है? बहुत सारे तर्क लेके गए तो बाबा ने उसका उत्तर नहीं दिया। बाबा ने कहा, बेटा इतना अमूल्य शरीर, अमूल्य जन्म मिला है, ये पुनर्जन्म सिद्ध करने के लिए नहीं मिला है, बोले जन्म से मुक्त होने के लिए मिला है। ऐसे ऐसे प्रश्न और ऐसे ऐसे उत्तर देते थे बाबा। एक बार गंगा के किनारे महाराज श्री और बाबा बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, हाथ में बालू लेकर के बाबा जी बोल रहे थे, शांतनु जब तक इस बालू के एक एक कण में आत्म तत्व के दर्शन नहीं होते हैं, ब्रह्म तत्व के दर्शन नहीं होते हैं, तब तक तुम अपने ज्ञान को पूरा नहीं समझना। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये बहुत गहरी बात है। माने आत्मा व्यापक है, आत्मा की व्यापकता तो इसी में है ना कि हम बालू के कण में भी हम हैं। वामदेव ब्रह्मज्ञानी वामदेव को ज्ञान हो गया, उपनिषदों में कहानी आती है, मां की पेट में ज्ञान हुआ, और जब ज्ञान हुआ तो अंदर से बोलने लगे, मनु रहम सूर्यश्च, मैं मनु हूं, मैं सूर्य हूं, मैं चंद्रमा हूं। ये क्या है? व्यापकता की अनुभूति है। ज्ञानी पुरुष आत्मे वेदम सर्वम, सब में आत्म तत्व के दर्शन करते हैं, और वो आत्म तत्व उनसे अलग नहीं होता है, वही आत्म तत्व जो स्वयं है, और इसीलिए आत्मा अविक्रियता की अनुभूति ज्ञानी को होती है। तो ज्ञानी के अंदर एक भाव उठता है कि मेरे को कहां जाना है, कहां आना है, क्योंकि जहां जाना है वहां भी मैं हूं, जिसको पाना है वो वस्तु भी मैं हूं। आप कल्पना कीजिए कि आप कहीं जाना चाह रहे हैं, और जहां जिस देश में जाना चाहते हैं वो आपको ऐसा मालूम पड़े वो भी मैं ही हूं। आपको हरिद्वार जाना है और आपको आत्मबोध हुआ, आपको लगने लगे कि हरिद्वार भी मैं ही हूं, तो उस समय आप जाओगे कैसे? बहुत मुश्किल है। एक ज्ञानी बैठे हैं और वो एक श्लोक बोला, उन्होंने बहुत सुंदर बोला, क्व गच्छामि कुत्र गच्छामि आत्मना पुरितम विश्व महाकल्पाम बुना यथा। दृष्टांत देके बोलते हैं कि जैसे कल्प का जल प्रलयकालीन, उसमें बारिश ही बारिश हो गई, चारों ओर बारिश, और जिधर बारिश नहीं होती उधर बारिश बहती है, जहां जल नहीं होता है वहां जल बहता है, ये जल का नियम है। लेकिन प्रलय काल में तो सर्वत्र जल ही जल हो गया, अब वो जल कहां बहेगा? अब बहने की जो क्रिया है वो समाप्त हो गई, जल ही जल है, चारों ओर जल। ऐसे वो ज्ञानी पुरुष कहता है, आत्मना पुरितम विश्वम, ये संपूर्ण विश्व आत्मा हो गया, मेरी आत्मा हो गया, फिर मैं जाऊं कहां, आऊं कहां? माने वहां अक्रियता की अनुभूति है, वहां अक्रियत्व व्यापकत्वात अक्रियत्वम। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, जब आपको व्यापकता की अनुभूति होती है तो वहां फिर अक्रियत्व की अपने आप अनुभूति, परिच्छिन्नता समाप्त हो जाती है। परम पूज्य मां आनंदमयी को किसी ने प्रार्थना की, मां आप विदेश क्यों नहीं जाती? और एक भक्त ने कहा कि आप जापान चले, मैं व्यवस्था करता हूं, आपके बहुत भक्त हैं वहां मानने वाले। मां ने एक छोटी सी बात बोली लेकिन बहुत गहरी। मां आनंदमय ने कहा कि बेटा यहां तो करवट बदलने की भी जगह नहीं है, यहां तो करवट बदलने इतनी भी जगह खाली नहीं, कहां जाए जापान। अब वो आदमी समझा कि नहीं समझा बात को, लेकिन बहुत गहरी बात बोली मां ने। मां ने कहा यहां तो इतनी जगह भी मेरे को छोड़ के नहीं है जहां मैं करवट बदल सकूं, इतनी भी जगह खाली नहीं, तो मैं जाऊं कहां, कहां जापान जाऊं मैं, कहां अमेरिका, यहां जाना आना कहां है। बहुत ही सुंदर बात मां ने एक छोटी सी बात में बोल दी। और साधक जब साधना करता है ना तो उसके अंदर भी ये अनुभूतियां होती हैं। ज्ञानी पुरुष इन संपूर्ण अनुभूतियों का आधार होता है। अब यही बात अगले श्लोक में कह रहे हैं कि आत्मा अविक्रिय विज्ञान घन एक रस, और इसीलिए उसमें कोई क्रिया नहीं, और क्रिया का आधार न होने के कारण उसमें कोई विक्रिया नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, न मारना उसके अंदर है और न उसमें मरना है, न सड़ना गलना, बाहर के निमित्तों से उसमें किसी भी प्रकार परिवर्तन हम नहीं कर सकते, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे जल हो, तेज हो, आकाश वायु, इनका प्रभाव आत्म तत्व पर पड़ता नहीं है। इसलिए भगवान ने आपको गीता जी में बता दिया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्रों से आघात करके आत्मा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जल से उसको गीला कर सड़ा कर मार नहीं सकते, उसको हवा से सुखा के नहीं मार सकते, अग्नि से जला के नहीं मार सकते। अब यहां इस श्लोक में आत्मा की व्यापकता का दिग्दर्शन कर रहे हैं। अणो रणियान महतो महियान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम तमक क्रतुहु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना। आत्म तत्व अणोहो अणियान महतो महियान, वो अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। ये हमारी अनुभूति आकार की अनुभूति है। हम किसी भी वस्तु को छोटा या बड़ा समझते हैं तो उसके आकार को लेकर के, और आकार का अर्थ है उस वस्तु की सीमा। जहां वस्तु की सीमा समाप्त हो जाती है वहां से दूसरे वस्तु की सीमा शुरू हो जाती है, जहां दूसरे वस्तु की सीमा शुरू हो जाती है वहां दूसरे वस्तु का अस्तित्व हमारी दृष्टि का विषय बन जाता है। जहां दूसरे वस्तु का अस्तित्व होता है वहां पहले वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। ये अस्तित्व की परिसमाप्ति का इनाम सीमा है। माने जहां अस्तित्व समाप्त हो गया उसी को तो सीमा बोलते हैं। जहां तक भारत का अस्तित्व है बस वहीं तक भारत है, और वही उसकी सीमा है, उस सीमा के परे, सीमा के बाद भारत नहीं है। ऐसे दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं उसकी एक सीमा है, उसका एक आकार है, उसके अस्तित्व की सीमा, उसके होने की सीमा, और उसकी सीमा जितनी होगी उतनी वो वस्तु है। अब जैसे परमाणु आप ले अणु, तो अणु में भी एक आकार है, उसकी ये उसका जो आकार है वो उसका अस्तित्व, और उसके बाहर फिर उसका अस्तित्व नहीं है। आप एक घड़े को ले ले उसका एक आकार है, मकान को ले उसका एक आकार है, इस शरीर को ले ले इसका एक आकार है, और इस आकार के बाहर वो नहीं है, सीमित आकार। इसलिए आप अणु से लेके परमाणु से लेके जो अतिशयन अणु बहुत छोटा, अणु अनियान। अब उस अणु में भी, अणु से भी जो छोटा है, अब श्रुति बहुत गहरी बात बोल रहे हैं, दुनिया की जितनी भी बहुत छोटी इकाइयां हैं उसको परमाणु बोला। नैयायिकों ने उसको परमाणु बोला है। नैयायिकों ने कहा आप विभाजन करो वस्तु का, और विभाजन करते 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 अंतिम अविभाज्य जो भौतिक पदार्थ का अंग है वो परमाणु है। स्थूल का विभाजन करते हुए आप तोड़ते 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 जाए और अंतिम हम उस अणु को तोड़ न पाए, अविभाज्य, उसको परमाणु बोला है। और उस परमाणु को आप मिटा नहीं सकते न्यायिकों के दृष्टि से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चार भूतों के परमाणु हुआ करते हैं, उसको अणु बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और यहां पर कहते हैं अणु हो अणियान, कितनी छोटी चीज है, अतीन्द्रिय मानते हैं उसको, हम उसको खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी। और उतनी छोटी चीज के अंदर भी वो है, क्योंकि परमात्मा का अस्तित्व यदि उसमें न हो तो आपको उसको परिचिन्न मानना पड़ेगा, कितनी भी बड़ी चीज हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, और वो एक जगह पर भी नहीं है तो उसको आपको परिचिन्न नहीं मानना पड़ेगा। परिचिन्न का अर्थ है उतने अंश में वो नहीं है, उसका अभाव मानना पड़ेगा। इसलिए श्रुति कहती है कि इतनी छोटी जो स्थूल पदार्थ की अंतिम इकाई परमाणु, उसके अंदर भी वो तत्व है, इतना वो सूक्ष्म है, इतना वो छोटा है, ये उसकी व्यापकता है। अणु रणियान, और उसके अंदर है तो उसके बाहर है कि नहीं? वो तत्व अंदर है, परमाणु के अंदर है तो परमाणु के बाहर है कि नहीं? हाँ, वो बाहर भी है, और अंदर और बाहर के बीच में जो दीवार है उसके अंदर, अब वहां पर भी तो अंदर सूक्ष्म और उसके बाहर है, और दोनों के बीच ये दीवार है उसके अंदर भी होता है। परम पूज्य महाराज श्री ने दृष्टांत दिया सावा, अब भाष्य में भी आया सावा, आपको भी बीज को देखना, बीज सबसे छोटा बीज, सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? सबसे बड़ा वृक्ष जो है वट वृक्ष, वट वृक्ष ही है हम लोगों के सामने, पीपल। और सबसे छोटा जो बीज है वो किसका है? बहुत ये प्रकृति ईश्वरीय जो माया शक्ति अचिंत, इसलिए बोला है सबसे बड़ा पेड़ वट वृक्ष पीपल, और आप बीज को देखोगे तो सबसे छोटा है वो, सबसे छोटा है, सबसे छोटा। और उसमें यदि कटहल लगने लगते तो आदमी तो उसके नीचे जाता ही नहीं, सोचता कि ऊपर से गिरा तो नमो नमः। भगवान ने बड़े बड़े फल बनाए लेकिन वो सारे जमीन पर, आप कद्दू देखना जो आप वो खाते हैं ना, कौन सी सब्जी होती है, कोहड़ा, कोहड़ा होता है ना, कोहड़ा खाते हैं कि नहीं आप लोग बम्बई के लोग खाते हैं ना? जब मैं बनारस में पढ़ता था या जब हम लोग रहते थे ऋषिकेश वगैरह में, तो मोदी भाई कोहड़े की सब्जी खाते थे हम लोग, क्योंकि सबसे सस्ती कोई सब्जी है। और वो महीनों कोहड़ा, फिर कोहड़ा 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 कोहड़ा, और बोरी भर भर के हमारे कोठारी लोग जो बोरी भर भर के ले आते थे, तो बड़ी अच्छी लगती थी, कोई शिकायत नहीं है। अरे बहुत अच्छी है, लेकिन खाते नहीं हो, वो मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे हो अच्छी है। हाँ, मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे हो, बहुत अच्छी होती है। जब कोहरे का समय शुरू हो जाता है तो हम लोग समझ जाते कि अब तो, और बैंगन का समय आ गया तो फिर बैंगन ही बैंगन। अब इतना बड़ा कोहरा, बहुत बड़े बड़े कोहरे हो गए, बड़े बड़े कोहरे, और वो पैदा कहां होते हैं? जमीन पर। और उसकी जो बेल है बहुत बड़ी नहीं होती है, उसकी बेल इतनी कमजोर कि आप पैर रखो तो टूट जाए। आप जूता पहन के घूम रहे हैं और उस कोहरे के डाल पर आपका पैर गिर जाए, टूट जाए। आप बंबई वाले ये ना समझे कि उसका झाड़ होता होगा बहुत बड़ा, उसकी बेल होती है और इतनी कोमल कि उसके ऊपर पैर रखो तो टूट जाए। और उससे जो फल पैदा होता है, अरे बहुत बड़ा कठोर, आप उसको हाथ से नहीं तोड़ सकते, आपको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, काटना नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, इतना कठोर वो क्या प्रकृति। और आपका पेड़ इतना बड़ा पीपल का, और उसके बीज, उसका फल, अरे वो इतना कोमल कि ऊपर से नीचे गिरते फूट जाता है, वो इतना कोमल, ऊपर से गिरा और वो फूट जाता है, और उसके अंदर बीज ढूंढो आप, मिलेगा नहीं, इतना छोटा छोटा, इतना छोटा बीज। और उस छोटे बीज को भी आप खोल के देखोगे, आपको नहीं मालूम पड़ेगा इसके अंदर है क्या, मालूम पड़ेगा बीज कहां है, लेकिन वही बीज है जो पेड़ को पैदा करता है, वही बीज है। इतना छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आपको मालूम नहीं पड़े, और उसी के अंदर से पेड़ पैदा होता है, उसके अंदर भी चेतना है, उसके अंदर भी चेतन तत्व है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अत्यंत सूक्ष्म जो बीज हैं, बीज अणु परमाणु, उसके अंदर भी मैं विराजता हूं, और उसके अंदर भी विराज कर उसको शक्ति प्रदान करता हूं, उसको अंकुरित करता हूं, उसको जीवन तत्व प्रदान करता हूं। ये स्वभाव है, ब्रह्म तत्व का स्वभाव। आप वेदांत में ब्रह्म की परिभाषा करते हैं, क्या करते हैं? बृहत्वात् ब्रह्म ऐसा करते हैं, बृहणत्वात् ब्रह्म। ये वेदांत भी बहुत मजेदार है। बृहत्वात् जो सबसे बृहत है वो ब्रह्म है, परमात्मा सबसे बृहत, महत्व महियान। अच्छा, और बृहणत्वात् जो बढ़ता है, जो बढ़ रहा है, जो बढ़ता हुआ है, इसलिए वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं कि ये जो आपका ब्रह्मांड है वो विस्तार को ही प्राप्त हो रहा है, फैल रहा है। और ये कब तक फैलेगा, और ये कब से शुरू हुआ ये फैलने की प्रक्रिया, इसका कोई आदि और इसका अंत, ये कब तक फैलेगा? और वेदांत ने हजारों साल पहले बोल दिया, अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि, ये जो संसार है, संसार के लिए भी बोला है और ब्रह्म के लिए भी बोला है। ये संसार जो अनादि है, छह अनादि बोलते हैं ना आप वेदांत, ये संसार कब से पैदा हुआ, इसका आरंभ कब से हुआ, बता सकते हैं? मुश्किल है। ये कब से पैदा हुआ, इसका आरंभ कब हुआ, बहुत मुश्किल है, बताना ही मुश्किल। अरे अनादि, इसका आदि कहना ही मुश्किल है, इसीलिए शास्त्र ने कहा अनादि है, अनादि, और बाद भी सही, आदि कौन सा आदि, यहां से शुरू हुआ कैसे बताएं? और बड़ी साफ बात बोली है, बहुत साफ बात बोली। हमारे मनुष्यों ने बहुत चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद मनुष्यों ने सोचा कि जगत के अंदर पैदा हुआ आदमी और वो लाखों वर्ष बाद में पैदा हुआ आदमी, वो कैसे जान सकता है कि लाखों वर्ष पहले जगत कैसे भगवान ने बनाया? बात तो सही है कि नहीं? और हम लोग विचार कर रहे हैं, अच्छा आप कैसे पैदा हुए आप बता सकते हो? आप कहां पैदा हुए ये भी बताना मुश्किल है, और उस समय लाइट थी कि नहीं बता सकते हैं? बहुत मुश्किल बातें हैं। क्या उसमें बिजली थी कि नहीं थी, वहां पर कौन थे, क्या थी परिस्थितियां, बहुत मुश्किल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं या बहुत ज्यादा से ज्यादा बहुत थोड़ी चीजें जान सकते हैं। जो आपके सामने सामने पैदा हुई चीज के बारे में भी हम पूरी की पूरी खबर नहीं दे सकते हैं, और हम खबर दे रहे हैं कि ये दुनिया भगवान ने कैसे बनाई, क्या मैटर था वहां, ये सारी चीजें तो हम बोलते जरूर हैं, लेकिन बहुत मुश्किल चीजें हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत ईमानदारी से बोला, भैया बात तो सत्य यही है कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं ये बोलेंगे तो आप समझेंगे नहीं। आप बोलेंगे आप तो बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, आप हमको बताइए। तो ऋषियों ने सोचा कि ऐसा कोई शब्द बोले जो सामने वाले का समाधान हो जाए, चुप हो जाए। उन्होंने कहा ये तो अनादि है। ये जो संसार है वो कैसे हैं, अनादि हैं। बोले ईश्वर, जीव, जगत ये अनादि हैं, ये प्रकृति अनादि है, ये अज्ञान जो है ना ये भी अनादि। अच्छा कब से आप अज्ञानी हैं? और बात भी सत्य है, आप मेरे को जानते हैं, आपको मैं पूछूं कि आप कब से जानते हैं तो थोड़ा दिमाग पर बल दें तो आप बता सकते हैं, जानने की तिथि बता सकते हैं। पहली बार जब आपने मेरे को देखा तो आपके पास जरूर उसकी तारीख होगी, देश होगा, हां अमुक जगह पर हम उस समय आपको देखा, तो देखने की तारीख आप बता सकते हैं, ज्ञान की तारीख आप बता सकते हैं। लेकिन आप मेरे को नहीं जानते थे, आप कब से नहीं जानते थे, ये नहीं जानने की जो प्रक्रिया थी कब से थी आप ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। नहीं जानना कब से शुरू हुआ? अज्ञानी कभी भी अज्ञानी होने का जन्मदिन नहीं मना सकता है। और बहुत सारे ज्ञानी लोग आत्मज्ञानी होने का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि ज्ञानी होने की तिथि है, लेकिन अज्ञानी होने की तिथि कहां है? और इसीलिए शास्त्र ने कहा अनादि। और ये संसार कब तक चलेगा? अनंत। इसलिए संसार को भी बोला अनादि अनंत। भैया इसका अंत, ये अनंत है, अनंत। और इतना अनादि अनंत जो संसार है, और उसका जो बीज है ना, छोटा सा बीज है, उसका छोटा सा बीज, और वही बीज विस्तार को प्राप्त हो रहा है, वो विस्तार फिर बीज को बना लेता है। उसके अंदर भी जिस परमात्मा का अस्तित्व है, और वो अस्तित्व परमात्मा का उस पदार्थ के अस्तित्व को फैलाता है। इसलिए सावे का उदाहरण दिया महाराज श्री ने, कहा कि सावा या पीपल का बीज, वट का बीज, छोटा सा, और उसके अंदर भी वो तत्व विराजमान, अनोरनियान, वो अणु से भी अणु है, माने उस अणु के अंदर भी विराजता है। और महतो महियान, जो बड़े से बड़ी चीज, जो बड़ी से बड़ी चीज है उससे भी वो बड़ा है, छोटी सी छोटी चीज उसके अंदर भी वो है, माने उससे भी छोटा है, और जो बड़ी से बड़ी चीज है उससे भी वो बड़ा है। अच्छा आप इसको व्यावहारिक अर्थों में आप ले समझ ले, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि छोटा से छोटा पदार्थ भी वही है, और बड़े से बड़ा पदार्थ भी, छोटा भी वही है और बड़ा भी वही। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा है। छोटा भी वही है और बड़ा भी, अच्छा भी वही है और बुरा भी। उस तत्व को छोड़ के कुछ भी नहीं है, जान देना। आप तत्व दृष्टि से देखो तो छोटा भी वही है और बड़ा भी, गरीब भी वही है और धनी भी, सुखी भी वही है और दुखी भी वही है। हमारी वो दृष्टि नहीं होने के कारण हम उसको समझ नहीं पाते। अच्छा मैं आपको 11वें अध्याय में गीता जी के विभूति योग का भगवान ने प्रतिपादन किया। भगवान ने कहा कि मैं हूं। आप ध्यान देना, एक कोई साधु जब हम वेदांत का चिंतन करते थे, गीता जी की चैंटिंग कर रहे थे हम लोग, तो एक साधु आया, बड़ा मजेदार साधु था। उन्होंने कहा मुझे कि तुमने विश्वरूप दर्शन किए, मेरे को बोला विश्वरूप दर्शन किए, तो मैंने कहा महाराज हम कैसे कर सकते, मैं तो बच्चा था, हम कैसे कर सकते, वो तो अर्जुन ने किया। अरे बोले नहीं, ये सबके लिए है। विश्वरूप का अर्थ क्या है, विश्वरूप माने विश्व ही परमात्मा का रूप है, वो भगवान की घोषणा है कि मैं ही हूं, माने आत्मा ही सब कुछ है, ये सारी दुनिया ये विश्व ही उस आत्मा का रूप है। बोले तुम्हारा रूप है, तुमको आज नहीं तो कल ये देखना है, ये सारा जो रूप है वो मेरा रूप है। जब दसवें अध्याय में परोक्ष प्रतिपादन किया, परोक्ष शब्द जन्य बोध हुआ अर्जुन को, ये सब कुछ परमात्मा है। मनुष्यों में भगवान ने कहा कि राजा मैं हूं, पर्वतों में हिमालय मैं हूं, नदियों में गंगाजी मैं हूं, वेदों में ओंकार मैं हूं, पशुओं में शेर मैं हूं, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, बहुत सारी चीजें बताई भगवान। लेकिन अर्जुन ने 11वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान के सामने प्रश्न किया, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम। अरे बोले सब बोल तो रहे लेकिन मेरे को कुछ मालूम तो पड़ ही नहीं रहा है, मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है। बोले द्रष्टुम इच्छामि, मैं परोक्ष ज्ञान में संतुष्ट नहीं हूं, सुनी सुनाई बातों में संतुष्ट नहीं हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, मैं अपनी अनुभूति बनाना चाहता हूं। तब जाके भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। आप उसी में आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा, ये संपूर्ण विश्व ही परमात्मा का रूप है, हमें क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि नहीं है, वो दिव्य दृष्टि विकसित नहीं हुई है। आप वहां दो ही उपाय, या तो वो दिव्य दृष्टि गुरु दे दे, या तो आप अपने भीतर से उसको विकसित करो। दो ही चीजें हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा लगता है, आप दो ही उपाय, या तो दूसरे का चश्मा लगाओ या तो अपना चश्मा। कई बार होता है ना, उधार ले लेते हैं, भैया हमारा चश्मा घर में रह गया, थोड़ा दोगे, लगा लेते हैं, लेकिन दूसरे का है, वापस देना पड़ेगा। वो आपको गुरु ने या आपको भगवान ने भी थोड़ी दृष्टि दे दी, आप लोग बोलते हो सिर पर हाथ रखो, सिर पर हाथ रखो, बोलते कि नहीं, आप रख दिया, थोड़ा मालूम पड़ गया। ये उधार ली हुई दृष्टि है, ये बहुत ज्यादा बहुत देर तक काम आने वाली चीज नहीं है, ये थोड़ा धक्का लगाने वाली चीज है। थोड़ा बूढ़ा आदमी है, थोड़ा उंगली पकड़ के उठा दिया, थोड़ा धक्का लगा दिया, तो कब तक लगाएगा दूसरा धक्का। इसलिए साधना, अंदर से साधना, जप ध्यान श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सारी चीजें करते करते अंदर से वो दृष्टि निर्मित होने के बाद, जब उस दिव्य दृष्टि के द्वारा, इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं, अंतकरण की शुद्धि हुई और आत्मबोध हुआ, मालूम पड़ा ये सारी चीजें वही हैं। लेकिन भगवान की कहने की शैली देखो, भगवान को कहना यही है कि सब कुछ मैं हूं। क्या भगवान को यह कहना है क्या कि मनुष्यों में मैं राजा हूं और जो प्रजा है वो क्या भगवान को यह बोलना है कि पवित्र सदा वाहिनी जो जाह्नवी गंगा मैं हूं और आपके मुंबई की मीठी नदी, नाम की मीठी है वो उसके अंदर शुगर बहुत डाला है आप लोगों ने, बंबई है ना, क्या भगवान को यह कहना है कि वो मीठी नदी मैं नहीं हूं? आपके शहर के निकले हुए गंदे नाले भगवान को कहना है कि मैं नहीं हूं? भगवान को यह नहीं कहना है, भगवान को यह कहना है सब कुछ मैं हूं। दुनिया की सारी जल धाराएं, चाहे स्वच्छ हो या ना हो, वो मैं हूं, मैं हूं। भगवान को यही कहना है, मैं मनुष्य मात्र हूं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब, मैं हूं। लेकिन भगवान यदि ये बात आपको बोलते हैं तो समझ में नहीं आती बात। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला कि उस दिन चलो दीप दान करने समुद्र, और मैं गंदे नाले के सामने ले जाता और बोलता चलो यहां, तो आप बोलते पागल हो गए क्या? ये गंदा नाला गटर और इसके अंदर दीप दान? कारण कि आपकी जो महत्व बुद्धि है वो वहां पर नहीं है। आपकी आस्तिकता, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था जहां पर है उसी बात को ग्रहण कर भगवान ने ये बात बोली है। हाँ, राजा में भगवान का रूप देखना बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन किसी दीन हीन भिखारी आदमी में भगवान का रूप देखना बहुत कठिन है, क्योंकि आपके अंदर उसकी महत्व बुद्धि क्या है? भगवान को कैसे होना चाहिए? राजा की तरह होना चाहिए। एक भिखारी की तरह भगवान कैसे हो सकता है? ये हमारी दृष्टि है। इसलिए आप जब भी भगवान को याद करते हो तो आप हाथ ऊपर करते हो कि नीचे करते हो? आप ऊपर हाथ करते हो, क्योंकि आपकी दृष्टि में भगवान को ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए? आपकी महत्व बुद्धि किसमें है? ये झगड़े किस चीज के हैं मधु बाबू? ये झगड़े तो ऊपर और नीचे के ही तो हैं। कोई आदमी कुर्सी पर बैठना चाहता है, और कुर्सी पर बैठना ऊपर है कि नीचे बैठना है? आदमी सोचता है मैं ऊपर हो जाऊं। ये ऊपर होने का जो भाव है ना, ये हमारे महत्व बुद्धि के कारण है। इसलिए ईश्वर है, ईश्वर होगा तो कहां होगा? ऊपर होगा कि नीचे होगा? सर्वत्र ऊपर भी है, नीचे भी है, मध्य में भी है, यहां भी है, वहां भी। लेकिन आप जब कल्पना करोगे तो आपके कल्पना का भगवान कहां होगा? वो गिरता हुआ होगा कि उठता होगा? इसलिए आपके महत्व बुद्धि को लेकर के भगवान ने बोला, गंगा जी का महत्व है, इसलिए भगवान ने कहा गंगा जी को। हिमालय चढ़ना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही घुटने कमजोर हो गए हैं शाह जी, आप क्या करोगे? तो आप क्या कल्पना करोगे? भगवान कहां है? हिमालय में, जहां आप पहुंच नहीं सकते, जो दुर्लंग है। ये हमारे महत्व बुद्धि को लेकर के शास्त्र ने कहा, और भगवान ने भी हमारे मन की महत्व बुद्धि को लेकर के भगवान ने बोला, मैं अमुक में हूं, अमुक में हूं, अमुक। भगवान को तो यही बोलना है, मया ततमिदम सर्वम जगदप व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानी। भगवान ने कहा कि सारी दुनिया मेरा ही रूप है, मेरे को छोड़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। भगवान को यही कहना है। परम पूज्य महाराज श्री की एक बात बता दूं मैं, एक बात ने मेरे को बहुत प्रभावित किया। जब मैं बनारस से आया, अपने आश्रम में रहने लगा, हम लोग बैठ करके चिंतन किया करते थे महाराज जी के पुस्तकों के ऊपर। एक चीज मेरे को बहुत प्रभावित कर गई, और वो चीज थी बहुत सामान्य चीज थी। एक कोई व्यक्ति अपने आश्रम में आया करते थे, और वो बहुत देखने में अच्छे नहीं थे, बहुत दीनहीन गरीब, जो भिक्षा मांग के खाया करते थे। जैसे लाइन में लगे भिक्षा ली खाए, पसीने से लथपथ, महीनों स्नान नहीं किया हो, कपड़े बहुत मटमैले गंदे, झोला भी ऐसा बहुत पुराना गंदा मैला, और वो हाथ में पानी का पात्र में डब्बे डुब्बा लेकर के ऐसा, आपने एक दैनिक की प्रतिमूर्ति। और महाराजेश्वरी के पास तो बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, बहुत साफ सुथरे। लेकिन उसमें वो भी व्यक्ति आ जाते थे, और जब वो व्यक्ति आ जाए तो बाकी के सारे लोग फिर, अब ऐसा आदमी आपके बगल में आके बैठ जाए तो आप अपने शान के खिलाफ समझोगे। ऐसे आदमी के बगल में बैठना मतलब आप महसूस करेंगे कि भैया हमारी इज्जत खराब कर दे गए, और वो लोग उनसे कटने लगते, दूर होने लगते। महाराज जी के निकट के शिष्यगण फिर उसको उठा देते थे, भगा देते थे और प्रतिबंध लागू कर देते कि भैया इसको यहां नहीं आने देना है, ये बेइज्जत कर देगा, ये इतना गंदा आदमी यहां कैसे आ सकता है। एक दिन उन्होंने महाराज श्री को बोला, बहुत जबरदस्ती आ करके लोगों ने बहुत रोका, रहे बोली कहां जा रहे, कहां जा रहे, कहां जबरदस्ती पहुंच गया। और उन्होंने महाराज श्री को बोला, महाराज जी मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपके चरणों में बैठना चाहता हूं, आपको सुनना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना गरीब दीनहीन हूं, मेरी वेशभूषा ऐसी है कि ये लोग मेरे को आप तक पहुंचने नहीं देते, आने नहीं देते। जब वो बात महाराज जी ने सुनी, महाराज जी ने बोला अच्छा ऐसी बात है, मैं समझा देता हूं। महाराज जी ने समझाया लेकिन कोई माने ही नहीं, लोग ही बोलते थे। ध्यान दीजिएगा, महाराज जी के शिष्य ही महाराज जी को बोलते महाराज जी आप समझ नहीं रहे हाँ राजेश भाई, कई बार हम अपने गुरु को भी बोलते हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं महाराज जी के शिष्य ही महाराज जी को समझा रहे थे कि आप समझ नहीं रहे हैं, बोले बहुत गंदा आदमी है वो और अपने शान के खिलाफ है वो, और उसकी जाति भी पता नहीं किस जाति का है। महाराज जी को बहुत दुख हुआ, आप मेरे को ही मेरे लोग समझा रहे हैं किसी ने नहीं माना। फिर एक दिन आया वो आदमी और महाराज श्री से प्रार्थना की कि महाराज जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, महीनों लोग मेरे को आपके दर्शन तक दूर से भी दर्शन नहीं करने देते, दरवाजे के अंदर ही प्रवेश नहीं करने देते। महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए, महाराज ने चारों ओर दृष्टि डाली, महाराज जी अकेले रहे। महाराज जी ने कहा देखो चिंता मत करना, बोले तुम 2 बजे आओ मेरे पास, 2 बजे दिन में 2 बजे। बोले मेरे सारे चेले लोग खा पी को सो जाते हैं उस समय, और चौकीदार भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, दोपहर के 2 बजे खाए पिए सारे साधु सो जाते हैं। बोले सब मैं कुंडी खोल के रखा करूंगा और तुम आ जाओ, क्या दया, क्या वो करुणा, क्या वो समत्व की दृष्टि, क्या वो अद्वैत दर्शन, जो छोटा भी वही और बड़ा भी वही। यही तो है अनोरणियान महतो महियान, इसके अर्थ क्या है। और वो व्यक्ति 2 बजे पहुंच जाए उसके पहले महाराज जी कुंडी खोल के रख देते थे और सब लोग चेले वही सो रहे, वही सोते रहते, उसको महाराज जी धीरे से अंदर ले आते, और जहां पर महाराज जी सोते थे ना पलंग पर, पहले दिन तो ले आए, दूसरे दिन बोले कि अब मेरे को उठना ना पड़े, मैं कुंडी खोल के सोया करूंगा। और वो 2 बजते ही वो आदमी धीरे 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 पहुंच जाता और महाराज जी को मिलता नहीं था वो, महाराज जी तो लेटे रहते, महाराज जी के पेट पर वो लेट जाता हो, और फिर महाराज जी उसके पीठ पर हाथ फेरते, और जितना उसको मन भर के मिलता कोई बात पूछता, और उसके बाद वो चुपचाप उठ के चला जाता था। क्या महापुरुष, आप भी मिलना नहीं चाहोगे। फिर लोगों को मालूम पड़ा, एक दिन एक चेला उठा और महाराज जी कुछ गुनगुना रहे थे, पीठ पर हाथ फेर रहे थे, कुछ गुनगुना रहे थे, बोले अंदर कौन पहुंचा, देखा वही पहुंचा है, वही पहुंचा है, जिसको हम रोकते वही पहुंचा है, और वो पेट पर लेटा हुआ है। महाराज जी के चेले ने कई चेलों को जगा दिया, बोले अनर्थ हो गया, अनर्थ, जिसको हम यहां गेट के अंदर प्रवेश नहीं करने देते वो तो अंदर पहुंच गया, महाराज जी के पेट पर लेटा हुआ है वो, जाके देखा लोगों ने पेट पर लेटा है। उसके बाद फिर ड्यूटी लगा दी, बाद में महाराज जी के शिष्यों ने ड्यूटी लगा दी कि आदमी यहां 2 बजे भी पहुंच न पाए, और उस आदमी के हाथ पैर ऐसी टांग ऐसे उठा करके चार लोग उसको रेल पटरी के बाहर कर दिए जाते थे। और उसके बाद भी महाराज जी बोलते, नहीं वो भी मेरा रूप है, उसको आप मत रोका करो। ये ज्ञानी का भाव है। जब ये बात जब मैंने पढ़ी पुस्तक में, महात्माओं से सुना, तो मेरे को लगा कि सचमुच ब्रह्मज्ञानी। क्या दिव्य दृष्टि है, छोटा भी वहीं बड़ा भी वहीं। अनोरनियान महतो महियान, भगवान ने गीता जी में बोला है ना, पंडिताः समदर्शिनः शुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ये आपका जो वेदांत है ना, आपका हिंदू दर्शन, ये बहुत उच्च कोटि का सिद्धांत है, बहुत उच्च कोटि का सिद्धांत। मारने वाला भी वही और बचाने वाला भी वही। दुनिया में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी। आपने भागवत में सुना होगा वो जड़ भरत का प्रकरण, जो मारने वाले डकैत हैं वो भी वही और बचाने वाली भद्रकाली भी वही। परम पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज को किसी आदमी ने आघात किया, मारा, हाशिया से मारा, चोट लगी, नाराज था वो किसी बात से। लोगों ने कहा इसको निकाल देते हैं, आश्रम से निकाल देते हैं। बाबा ने कहा नहीं निकालोगे इसको। ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं सुना रहा हूं, ये अभी की बात है, अभी की। लोगों ने कहा कि इन्होंने आपको मारा, गाली नहीं दिया है, क्या किया है आपको? तो कोई गाली भी दी तो बहुत हो गया, यदि आपका थोड़ा सा भी कोई तिरस्कार भी कर दे तो आप उसको स्वीकार नहीं करोगे। बाबा को लोगों ने कहा कि बाबा इन्होंने आपको मारने का प्रयत्न किया है, चोट पहुंचाई, नाक पर चोट आई, ब्लड बहा, इसको निकाल दे। बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने यहां तक बोला कि इसको यदि तुम निकाल दोगे तो मैं ही चला जाऊंगा। बोले वो मेरा ही रूप है, मारने वाला भी वही और तुम लोग बचा रहे वो भी। महाराज श्री ने एक पावन प्रसंग पढ़ने जैसा ग्रंथ है, उसमें एक उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है। एक महात्मा थे, किसी के घर में रहते थे गांव में। वो गांव का भगत बड़ी सेवा करता था, आराधना करता था। उनके बच्ची की शादी थी, बहुत सारे अलंकार बच्ची की या बहू के लिए अलंकार बनाकर रखा थे, सोने के अलंकार, बहुत सारे वस्त्र वगैरह। उन्होंने सोचा कि ये सारे अलंकार बाबा को पहना देता हूं मैं, और फिर प्रसाद बनाकर मैं अपने बहू को पहना दूंगा। उन्हें जितने अलंकार थे, पैर वाले पैर में, हाथ वाले हाथ में, गले वाले गले में, वो पूरे अलंकार, बहुत से अलंकार उन्होंने पहना दिए। और पहनाकर बाबा को सुला दिया, बोले बाबा मैं कल सुबह आऊंगा 4 बजे और ये सारे अलंकार ले जाऊंगा, मैं अपने बहू को पहनाऊंगा, ये प्रसाद बन गए। बाबा सो गए। दूसरे दिन सुबह सेठ जी आ गए, भगत आ गए, और बाबा दरवाजा तो लगाते नहीं थे, यूं सो गए। अंदर जाके शरीर पर देखा, एक भी अलंकार नहीं है, एक भी अलंकार नहीं है। भक्त घबरा गया, उन्होंने कहा महाराज जी कहां गया अलंकार? बाबा ने कहा बेटा रात में जिसने पहनाया, बोले सुबह आके उतार के ले गया। जो रात में आया था, बोले वही। उन्होंने कहा कि बाबा रात में तो मैंने पहनाया था, और वो सुबह आके कौन ले गया? अरे बोले बेटा वही था जो रात में पहनाया, वही था। बोले भेद कहां यहां? जिसने पहनाया, बोले वही ले गया उतार के, सुबह आके कोई ले गया। बाबा बोले ठीक है, जो वो और ये एक ही है। ये अद्वैत दर्शन नारायण, जो तत्व दृष्टि से आप देखो तो ज्ञानी भी वही और अज्ञानी भी वही, सुखी भी वही दुखी भी वही, छोटा भी वही बड़ा भी वही। ये ज्ञानी की दृष्टि है। अनोरनियान महतो महियान, एक जगह पर तुकाराम महाराज ने कहा छोटा भी हूं मैं, आकाश आकाश, अच्छा उन्होंने तो ये बोला है मैं छोटे से छोटा हूं आकाश से भी बड़ा हूं मैं, ऐसा इसी श्रुति का अनुवाद किया उन्होंने, मैं ऐसा बोला मैं। यहां तो परोक्ष वर्णन है, आत्मा के रूप में वर्णन है। और तुकाराम महाराज जी कहते कि मैं छोटे से छोटा हूं और मैं बड़े से बड़ा हूं। ये जो आत्मदर्शन है, आत्मदर्शन, और एक बार आत्मदर्शन होगा तो आप छोटे में भी वही देखेंगे और बड़े में भी। इसलिए ज्ञानी ततो न विजुगुप्सते, ज्ञानी किसी से घृणा नहीं करता है क्योंकि वो सबको आत्मरूप समझता है। छोटा बड़ा ये केवल शब्द नहीं है, अनोरणियान महतो महियान, ये आत्मज्ञानियों की अनुभूति है। हर वस्तु में वो तत्व है, शिया राम में सब जग जानी, सर्वम खर्विदम ब्रह्म आत्मे वेदम सर्व। आप सीधे बैठे हैं। ओम ह्रीम नमः शिवाय, 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 ओम शांति शांति शांति।